संख्या 100।
अध्याय 6, साक्षात्कारों के आधार पर शिक्षकों के विचार। प्रश्नोत्तरी। प्रोफेसर विनय कुमार अग्रवाल, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के संगीत एवं ललित कला संकाय में प्रोफेसर तथा अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं, उनसे पूछे गए प्रश्नों का ब्यौरा इस प्रकार है। प्रश्न एक, आज हमारी शिक्षण संस्थाएं शास्त्रीय संगीत के स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में क्या-क्या भूमिका निभा सकती हैं? उत्तर, आज शिक्षण संस्थाओं ने जहां संगीत विषय की सुलभता प्रदान की है, वहीं साथ ही साथ संगीत को सभ्य समाज में सम्मानजनक स्थान दिलवाने में भी अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। इन शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत संगीत शिक्षकों को भी समाज के अन्य व्यक्तियों जिनकी सुविधाएं व सम्मान प्राप्त हैं, आज कई कलाकारों को भी इन शिक्षण संस्थाओं ने अपनी कला की गरिमा को बचाए रखने के लिए संरक्षण प्रदान किया है। कलाकारों को उनके परिश्रम के फलस्वरूप उचित पारिश्रमिक भी मिल जाता है। इन शिक्षण संस्थाओं में संगीत का प्रचार प्रसार तो अधिक हुआ है, लोगों की रुचि में भी जागृति आई है, किंतु गुणवत्ता की दृष्टि से अभी भी पर्याप्त त्रुटियां हैं, जिनके लिए शिक्षण संस्थाएं अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। पहला, विद्यार्थी का प्रवेश योग्यता के आधार पर ही होना चाहिए। विद्यार्थियों की अधिक संख्या के विचार को बदलना होगा और ऐसा करने से ही योग्य कलाकारों का निर्माण संभव होगा। शिक्षकों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। विद्यार्थी और शिक्षकों में प्रारंभिक गुरु शिष्य की भांति संबंध व संपर्क भी बना रहना चाहिए। प्रश्न दो, स्वतंत्र संस्थाएं जैसे स्पिक मैके, ITC, उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र, संकल्प आदि को क्या-क्या प्रयत्न करने चाहिए ताकि शास्त्रीय संगीत जन समुदाय के अधिक निकट आ सके। पृष्ठ संख्या 101। उत्तर, ये स्वतंत्र संस्थाएं न केवल कलाकारों को मंच प्रदान करती हैं, बल्कि हमारी शिक्षण संस्थाओं में कार्य कर रहे उच्च कोटि के शिक्षकों व प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को, जो अच्छे मंच प्रदर्शक भी हैं, मंच देकर उनको प्रोत्साहित करती है, जो एक बहुत ही प्रशंसनीय प्रयास कहा जा सकता है। किंतु इन संस्थाओं में संगीत के केवल क्रियात्मक पक्ष को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि उसके सैद्धांतिक पहलू को भी भुलाया नहीं जा सकता। इन संस्थाओं को चाहिए कि कलाकार के प्रदर्शन के साथ साथ संगीत के शास्त्र पक्ष पर भी कुछ कार्यक्रमों का आयोजन करें। आज कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें से केवल गायन के कलाकारों ही निकल रहे हैं, जबकि वाद्य संगीत के अंतर भी इन संस्थाओं को प्रयास करने चाहिए और उसके शिक्षण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे इन स्वतंत्र संस्थाओं के प्रयत्न और भी प्रशंसनीय प्रभावित हो सकेंगे। प्रोफेसर मधुबाला सक्सेना, जो कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संगीत विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्षा के पद पर कार्यरत थीं, आज संगीत विश्वविद्यालय दिल्ली में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। उनसे पूछे गए प्रश्नों को का ब्यौरा इस प्रकार है। प्रश्न एक, आज हमारी शिक्षण संस्थाएं शास्त्रीय संगीत के स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में क्या-क्या भूमिका निभा सकती हैं? उत्तर, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण संस्थाओं की दृष्टि से हमारे सामने तीन उद्देश्य रहते हैं। पहला, प्रचार प्रसार अर्थात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक संगीत पहुंचे। विकास के भी कई चरण हैं। पहला, कितने लोग उसको सुनते हैं। दूसरा, उसका स्तर क्या है, लोगों की दृष्टि से स्तर क्या है। तीसरा, संगीत विषय की गरिमा की उपयोगिता किस हद तक कामयाब सिद्ध हुई है। उपयोगिता दो दृष्टि से देखी जाती है, व्यक्ति के चरित्र उत्थान की दृष्टि से, नैतिक उत्कर्ष की दृष्टि से। दूसरा, कोई भी कला समाज के कितनी काम आ रही है। तीसरा भी इसी से जुड़ा है, हमारा शोध कार्य या संशोधन या किसी भी विकास की प्रक्रिया का विश्लेषणात्मक अध्ययन, यानी विकास के वो कौन से चरण हैं जिनको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। ये काम शोधार्थी करते हैं, इसलिए शोध की दिशा में जितनी भी सतत प्रयास किए जाएं या जितनी भी कामयाब रिसर्च की जा सके, वो किसी भी कला को या संगीत को उन्नतशील बनाती है, उसके स्तर को बढ़ाने में पूर्ण योगदान देती है। शिक्षण संस्थाओं में भी हमारे सामने तीन उद्देश्य या लक्ष्य सम्मुख रहते हैं, शोध, कलाकार प्रदर्शन और संगीत की गुणवत्ता यानी संगीत का सौंदर्य। शास्त्रीय पक्ष की दृष्टि से अगर शिक्षण कार्य संपन्न करते हैं तो इससे यह कहा जा सकता है कि संगीत के विकास में वह पूर्ण योगदान दे रहे हैं। पृष्ठ संख्या 102। शिक्षण संस्थाएं भी अगर इन्हीं लक्ष्यों को सम्मुख रख कर कार्य करें तो निश्चित रूप से शास्त्रीय संगीत के विकास में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है, किंतु बशर्ते इन तीनों को सम्मुख रखकर ही शिक्षण का कार्य संपन्न हो तो इससे स्तर में भी वृद्धि हो पाएगी। प्रश्न यह है कि क्या हम उतना आगे बढ़ पा रहे हैं जितना हम सोचते हैं? जैसे विद्यार्थी के मन में संगीत के प्रति प्रेम, निष्ठा, संस्कार, लगन उत्पन्न कर पाए हैं, उसमें हम सफल हो पाए हैं या नहीं? अगर हो पाए हैं तो अलग बात है, यदि हम सफल नहीं हो पाए हैं तो इसके पीछे कौन-कौन से ऐसे कारण हैं? इसके लिए अनेक कारण या प्रशासन से जुड़े हुए कई कारण हैं, जैसे कुछ संस्थागत व्यवधान हैं, कुछ साधना की कमी है, वैज्ञानिक उपकरणों का भी अभाव है क्योंकि हम कुछ अच्छे उपकरण खरीदना चाहते हैं, उसके लिए प्रशासन से उतना अनुदान नहीं मिल पाता। कुछ शिक्षक भी ऐसे हैं जो पूरी लगन व निष्ठा से काम नहीं करते, इसलिए अनेक कारण इसके लिए उत्तरदायी हैं। हाँ, अगर हमें पूरा योगदान मिले तो पूरी सहायता मिले, अनुदान मिले, काम करने वालों का योगदान मिले, तो निश्चित रूप से शिक्षण संस्थाएं शास्त्रीय संगीत के स्तर वृद्धि में अच्छी भूमिका निभा सकती हैं। प्रश्न दो, स्वतंत्र संस्थाएं जैसे स्पिक मैके, आईटीसी, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, शिल्प संकल्प आदि को क्या-क्या प्रयत्न करने चाहिए ताकि शास्त्रीय संगीत जन समुदाय के अधिक निकट आ सके? उत्तर, आईटीसी का तो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हमारे संगीत को मिल रहा है। जब हमारी शिक्षण संस्थाओं से विद्यार्थी एमए करके निकलते हैं तो कहने को तो वह मास्टर्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की डिग्री कहलाती है, किंतु संगीत जैसे विषय पर यह बात लागू नहीं होती, क्योंकि संगीत तो एक समुद्र की भांति है। अर्थात ऐसी जिज्ञासु विद्यार्थी जो एमए करके इन शिक्षण संस्थाओं से निकलते हैं, उनको आईटीसी छात्रवृत्तियां प्रदान करती हैं और वहाँ शिक्षा का स्तर भी बहुत अच्छा है। विद्यार्थी वहाँ जाकर जिस गुरु से चाहें शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। सबसे प्रमुख बात यह है कि आईटीसी उस कलाकार को मंच भी प्रदान करती है, यानी प्रदर्शन की दृष्टि से वो एक अच्छा संस्थान है। स्पीक मै के उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र इत्यादि संगीत के कलात्मक पक्ष की ओर अधिक ध्यान दे रहे हैं, विशेषतः मंच को आकर्षक बनाना, लालित्य को उभारना इत्यादि। इन सभी संस्थाओं की ओर से संगीत के एक शास्त्र पक्ष को बिल्कुल ही नगण्य अर्थात छोड़ दिया गया है। संकल्प जैसे कई अन्य संस्थाओं में भी यही हो रहा है कि केवल जितने सदस्य होते हैं मिलकर बैठते हैं, थोड़ा गाना बजाना होता है। ये संस्थाएं संगीत के केवल क्रियात्मक पक्ष को ही उजागर कर रही हैं, जबकि शास्त्र पक्ष भी संगीत का एक आवश्यक अंग है जिसको भुलाया नहीं जा सकता। ये आवश्यक है कि संगीत में क्रियात्मक पक्ष सदैव प्रबल रहे। शास्त्र पक्ष उसके साथ साथ चलता है, किंतु फिर भी शास्त्र पक्ष का अपना विशेष महत्व है, जिसकी ओर ध्यान देना अति आवश्यक है। घरानेदार लोगों ने शास्त्र पक्ष को बिल्कुल ही भुला दिया है। यही कारण है कि रागों के स्वरूप में अवतारणा में शिथिलता आई है और अलग-अलग घरानों में अलग-अलग प्रकार की बातें हुई। शास्त्रों ने क्या कहा, इसकी ओर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया, किंतु हमारी शिक्षण संस्थाओं में जो संगीत के दोनों पक्षों क्रियात्मक और शास्त्र पक्ष को ध्यान में रखा गया है, आज संगीत के ग्रंथों में संगीत के इतिहास की जानकारी मिलती है। इतिहास के आधार पर ही भविष्य निर्माण की योजनाएं भी सामने आती हैं, तभी हम उसको सामने रखकर कोई कार्य कर सकते हैं। ये सभी बातें हमारी शिक्षण संस्थाओं में ध्यान में रखी जाती हैं, जो कि ये समितियां संगीत के एक ही पक्ष यानी क्रियात्मक पक्ष को ही ध्यान में रख रही हैं। कुछ समितियों द्वारा तो कुछ योजनाएं बनाई जा रही हैं कि संगीत के सैद्धांतिक पक्ष को उजागर किया जाए, जिसके लिए संकल्प द्वारा कुछ भविष्य में ऐसी विचार गतिविधियां करने के विचार हैं या उनकी योजना में है। सेमिनार पेपर रीडिंग रखे जाएंगे, जो एक अच्छी योजना कही जा सकती है। अन्य संगीत समितियों को भी यह अवश्य प्रयत्न करने चाहिए, जिससे वे शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार व उसके स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर सकती हैं। प्रश्न 3, संगीत शिक्षण की स्तर वृद्धि में अपनी भूमिका किस प्रकार निभा सकते हैं? उत्तर, ऐसे घरानेदार कलाकार जो केवल मंच प्रदर्शन पर निर्भर नहीं रह सकते, तो वह किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में नौकरी कर लेते हैं। वह घरानेदार शिक्षक क्लास के साथ, विद्यार्थियों के साथ, शिक्षण संस्थाओं के साथ अन्याय ही कर रहे हैं। जब ये कलाकार कार्यक्रम देने इधर उधर जाते हैं, तो इससे विद्यार्थियों का नुकसान होता है, क्योंकि वो कलाकार अपना कार्यक्रम तो किसी भी हाल में छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कार्यक्रम से तो उन्हें पैसा भी बहुत मिल जाता है, जबकि संस्था में उनको पगार तो मिलती ही जाएगी, जिससे वो शिक्षण संस्था के प्रति अपना उत्तरदायित्व ही नहीं समझते, अपनी ड्यूटी निभा नहीं सकते, किंतु उसके लिए यह आवश्यक है कि उसको अपनी एक मानसिकता बनाए रखनी चाहिए, उसको वो काम या ड्यूटी निभानी चाहिए जो उसको उत्तरदायित्व बनाना है। उसके प्रति निष्ठावान रहते हुए कार्य करें, उसमें से समय निकालकर मंच प्रदर्शन करें, एक अच्छा कलाकार बने, शास्त्रीय संगीत का प्रचार प्रसार करें जिससे शास्त्रीय विद्यार्थियों के साथ न्याय होगा और संगीत का स्तर भी ऊंचा होगा। प्रोफेसर पुष्पेंद्र शर्मा, जो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के संगीत विभाग में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे, उनसे पूछे गए प्रश्नों का ब्यौरा इस प्रकार है। प्रश्न एक, आज हमारी शिक्षण संस्थाएं शास्त्रीय संगीत के स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में क्या-क्या भूमिका निभा सकती हैं? उत्तर, हमारी शिक्षण संस्थाओं का मुख्य कार्य विद्यार्थी को संगीत के दोनों ही पहलुओं, सैद्धांतिक व क्रियात्मक पक्ष से भलीभांति अवगत करवाना तथा किसी हद तक मंच प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना है। जहाँ तक शास्त्रीय संगीत के स्तर का प्रश्न है, वहाँ पर मेरा यह मानना है कि संस्थाओं ने कुछ प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को इतना अवश्य तैयार किया है कि वे मंच प्रदर्शन भी कर पाते हैं तथा संगीत से संबंधी विषयों पर चर्चा भी कर लेते हैं। संगीत विषय का अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थियों से एक स्तर की कल्पना करना न्याय संगत नहीं है। शिक्षण संस्थाएं एक अच्छा कार्य तभी कर सकती हैं अगर उन शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों की नियुक्ति केवल प्रतिभा और योग्यता के आधार पर की जाए। प्रश्न दो, स्वतंत्र संस्थाएं जैसे स्पिकमैके, ITC, उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र, संकल्प आदि को क्या क्या प्रयत्न करने चाहिए ताकि शास्त्रीय संगीत जन समुदाय के अधिक निकट आ सके? उत्तर, इनमें कुछ संस्थाएं जिसके पास अच्छा बजट नहीं है तथा नया नया कार्य शुरू किया है, वे संस्थाएं तो अच्छा प्रयत्न कर रही हैं, परंतु ऐसी संस्थाएं जिनके पास पैसे का अच्छा प्रबंध है, इन संस्थाओं को विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति जो कि प्रतिभाशाली हैं, परिश्रमी हैं तथा एक अच्छा कलाकार बनने की दिशा में अग्रसर हैं, उनको आर्थिक सहायता करनी चाहिए ताकि वे लोग एक ही स्थान पर टिक कर नहीं बल्कि अन्य अनेक स्थानों पर जाकर उच्च कोटि के गुरुजनों के साथ संपर्क बनाकर अपनी कला को निखार सकें। प्रोफेसर शारदा भारद्वाज, जो कि राजकीय महिला महाविद्यालय रोहतक में प्रोफेसर के पद पर वर्ष 1991 से सेवामुक्त हुई हैं, उनसे किया गया साक्षात्कार। प्रश्न एक, आज हमारी शिक्षण संस्थाएं शास्त्रीय संगीत के स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में क्या-क्या भूमिका निभा सकती हैं? उत्तर, शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा तीन प्रकार से संपन्न होती है, विद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर और विश्वविद्यालय स्तर पर। विद्यालय स्तर पर शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वो प्रारंभिक अवस्था में विद्यार्थी को स्वर पहचान करवाएं। पृष्ठ संख्या 105। साथ ही साथ कुछ अलंकारों, पलटों पर भी बल दिया जाना चाहिए। महाविद्यालय स्तर पर कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो विद्यालय से संगीत सीख कर आए हुए होते हैं और कुछ विद्यार्थी नए होते हैं। इन नए विद्यार्थियों के लिए शिक्षक को थोड़ी देर अलग से समय देना चाहिए। महाविद्यालय स्तर पर पीरियड्स लगते हैं जिनकी अवधि मात्र 40 मिनट रहती है। शिक्षक को चाहिए कि 30 मिनट सभी विद्यार्थियों को सिखाएं और उसके उपरांत बाकी 10 मिनट कमज़ोर विद्यार्थियों को अलग से सिखाया जाना चाहिए, जिसमें 2 या 3 महीने उपरांत सभी विद्यार्थी एक जैसा गाने बजाने लगेंगे। इसके उपरांत विश्वविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को स्वर लगाने के ढंग के बारे में बताया जाना चाहिए। विद्यार्थी को स्वर साधना, केंद्र साधना, अभ्यास के महत्व के बारे में बताया जाए। ऐसी अवस्था भी होनी चाहिए जिसमें विद्यार्थियों को देश के उच्च कोटि के कलाकारों के गायन वादन की रिकॉर्डिंग सुनवाई जाए, जिससे उनके मन में संगीत के प्रति रुचि उत्पन्न होगी, जो एक मूल एवं महत्वपूर्ण चीज़ है। विद्यार्थियों के मन में शास्त्रीय संगीत के प्रति रुचि के अतिरिक्त श्रद्धा, निष्ठा, अभ्यास की प्रेरणा और एक कलाकार बनने की लगन उत्पन्न होगी। शिक्षण संस्थाओं में उच्च कोटि के कलाकारों का प्रदर्शन हेतु आमंत्रित करते रहना चाहिए। विश्वविद्यालय स्तर पर सप्ताह में एक बार संगीत संगोष्ठी का आयोजन किया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी के लिए मंच प्रदर्शन अनिवार्य होना चाहिए। अगले सप्ताह में कोई एक विद्यार्थी संगीत के शास्त्र पक्ष पर चर्चा करे। शिक्षकों का भी माह में एक बार प्रदर्शन आयोजित किया जाना चाहिए, जिसमें मंच प्रदर्शन की भावना को प्रोत्साहन मिलेगा और विद्यार्थी और शिक्षक भी सक्रिय रहेंगे। ये भी संभव है कि इससे कुछ अच्छे कलाकारों का भी निर्माण हो सके। प्रश्न 2, स्वतंत्र संस्थाएं जैसे स्पिक मैके, ITC, उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र, संकल्प आदि को क्या क्या प्रयत्न करने चाहिए ताकि शास्त्रीय संगीत जन समुदाय के अधिक निकट आ सके। उत्तर, उन स्वतंत्र संस्थाओं ने कलाकारों को ही नहीं अपितु नव स्थापित कलाकारों को भी प्रदर्शन के अनेक अवसर प्रदान कर प्रोत्साहित किया है, किंतु इन संस्थाओं की ओर से कार्यक्रम की पूर्व सूचना व विज्ञापन संबंधी अभी भी त्रुटियां हैं। समाप्ति, स्थापित कलाकारों की अपेक्षा उभरते हुए कलाकारों को प्रदान की जाने वाली धन राशि में काफी अधिक अंतर होता है, जो अपने आप में एक बुराई है। इन संस्थाओं को हमारी शिक्षण संस्थाओं में भी कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए, जिससे संगीत विषय में जुड़े हुए विद्यार्थी ही नहीं बल्कि जन साधारण भी संगीत के कार्यक्रमों का आनंद उठा सकें। पृष्ठ संख्या 106, प्रोफेसर सुरेश गोपाल श्री खंडे, जो कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संगीत विभाग में प्रोफेसर थे, आपसे किया गया साक्षात्कार। प्रश्न 1, आज हमारी शिक्षण संस्थाएं शास्त्रीय संगीत के स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में क्या क्या भूमिका निभा सकती हैं? उत्तर, शिक्षण संस्थानों ने भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार में अपना अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विषय की सुगमता प्रदान की है और सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया है रोजगार। ऐसे कलाकार जो बीच की श्रेणी में आते हैं, वो मंच प्रदर्शन के कार्यक्रमों से होने वाली आय पर निर्भर नहीं रह सकते, उन कलाकारों के लिए यह शिक्षण संस्थाएं वरदान सिद्ध हुई हैं। ऐसे कलाकारों को शिक्षण संस्थाओं ने नौकरियां देकर साधना करने के लिए उनका मार्ग प्रशस्त कर दिया है। ऐसे ही अनेक कलाकार आज अपनी कला साधना में एकाग्रचित्त होकर शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। किंतु क्या ये शिक्षण संस्थाएं वास्तव में उन सभी उद्देश्यों की पूर्ति कर पा रही हैं जिन लक्ष्यों का सम्मुख रखकर पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर और पंडित भातखंडे जी ने इनकी स्थापना की थी। इसके संबंध में यही कहा जा सकता है कि आज प्रसार प्रचार की दृष्टि से संगीत का स्तर बढ़ा है, किंतु गुणवत्ता की दृष्टि से स्थिति बहुत ही चिंताजनक बनी रही हुई है। आज का विद्यार्थी संगीत को भी अन्य विषयों की भांति पढ़ना चाहता है, जबकि क्रियात्मक विषय होने के कारण उसमें साधना व चिंतन की अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक आवश्यकता है, किंतु विद्यार्थी का यही प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर किसी प्रकार नौकरी पा लें। ऐसे बहुत कम विद्यार्थी या प्रतिभाशाली छात्र दिखाई पड़ते हैं जो संगीत से जुड़े रहते हैं और अभ्यास से निरंतर जुड़े रहते हैं। साधना की कमी के कारण उनकी शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न कोटि का होता है। जब वही शिक्षक बनते हैं तो अपने विद्यार्थियों को कुछ भी नहीं सिखा पाते। कुछ गैर सरकारी संगीत संस्थाएं इस दिशा में सक्रिय हैं, जो अब भी घराना परंपरा की विशेषताओं की को सम्मुख रखकर शिक्षण दे रही हैं। उन्हीं संगीत संस्थाओं से विद्यार्थी आज मंच प्रदर्शक बनकर निकल रहे हैं, जिनका आधार घराना पद्धति ही है। आज अनेक संस्थाएं जैसे ITC, श्रीराम भारती कला केंद्र, गांधर्व महाविद्यालय आदि से शिक्षण प्राप्त करके निकले हुए कलाकार देश के उच्च कोटि के कलाकारों में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं।